ओम नमस्ते जी। 196वीं श्रव्य कणिका सत्याद प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला, आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम सप्तम समुल्लास में ईश्वर एवं वेद विषय की व्याख्या जानने की कोशिश कर रहे हैं जो महर्षि ने सत्याद प्रकाश में दी है। तो ईश्वर के गुणों का वर्णन चल रहा था, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी द्वारा किया हुआ भाष्य सत्यार्थ भास्कर नामक पुस्तक में आपके सामने हम पढ़ रहे हैं। आगे आ रहा है, विद्वानों ने अक्षर के भिन्न भिन्न तीन अर्थ माने हैं। पहला है, शाकपूणी कहता है कि ओम पदवाच्य ब्रह्म अक्षर है। ऋग्वेदादि सब इसी सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वरक्षक अक्षर में स्थित हैं और इसलिए नाना देवता वाले सब मंत्रों का वर्ण्य विषय यही अक्षर है, अर्थात ओम पदवाच्य ब्रह्म ही चारों वेदों का प्रतिपाद्य है। अतएव अग्नि वायु आदित्य अश्विनव आदि सभी देवताओं से वह एक ही ब्रह्म अभिप्रेत है। ब्राह्मण में कहा है कि यह ओम पदवाच्य ब्रह्म ही वह अक्षर है जो संपूर्ण त्रयी विद्या का प्रतिनिधि रूप है। इसी प्रकार कठोपनिषद में कहा, सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति आदि, फिर जिसका अंतिम पद है, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्योम इत्येतत्, एतद्येवाक्षरम ब्रह्म, एतदेवाक्षरम परम, एतद्येवाक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। एवं अक्षर को ओम पदवाच्य मानकर मंत्रार्थ कर दिया गया। आदित्य इति पुत्रः शाकपूर्णेः एशर्ग भवति यदेन मर्चन्ति तस्य यदन्यन मंत्रेभ्यस्तदक्षरं भवति रश्मयोत्र देवा उच्यन्ते य एतस्मिन् नदि निषण्णाः इत्यधि दैवतम् अथाध्यात्मम् शरीरमत्र रिगुच्यते यदनेनार्चन्ति तस्य यदविनाशि धर्म तदक्षरं भवति इंद्रियाण्यत्र देवा उच्यन्ते यान्यस्मिन् नदि निषण्णानि इत्यात्म प्रवादाः। शाकपूणी का पुत्र अक्षर का अर्थ आदित्य करता है। यह आदित्य ही ऋक् है क्योंकि इसकी पूजा करते हैं। इसी तरह ऋच धातु से आदित्यवाची अर्क शब्द सिद्ध होता है। उस आदित्य का जो अवयवों से भिन्न संपूर्ण रूप है वह अक्षर है। एवं इससे विदित होता है कि प्रस्तुत मंत्र में आदित्यावयव ऋक् हैं और आदित्य अक्षर है। इस पद पक्ष में देव रश्मियां हैं एवं मंत्रार्थ इस प्रकार होगा, यस्मिन् परमे व्योमन अक्षरे, जिस उत्कृष्ट और सर्वरक्षक आदित्य में ऋचः विश्वे देवाः उपनिषेदुः, संपूर्ण आदित्य अवयव और सब रश्मियां अधिनिहित हैं, अर्थात जिस आदित्य का प्रकाश तथा ताप आदि अपना है और जिसमें चंद्रादि लोकों की प्रकाशक किरणें विद्यमान हैं, यह तत् न वेद जो उस आदित्य के विज्ञान को नहीं जानता, ऋचा किम करिष्यति, वह आदित्य अवयव से क्या करेगा, अर्थात वह सूर्य के प्रकाश और ताप आदि से कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकता। ये तत्विदुः अपितु, जो विद्वान उस आदित्य को जानते हैं, ते इमे समासते, वे रोग आदिकों से रहित होकर सम्यक्तया चिरकाल तक जीवित रहते हैं। यह मंत्र का आधि दैविक अर्थ है। अब तीसरी बात, अध्यात्म में इसका अर्थ इस प्रकार होगा, जिस उत्कृष्ट और सर्वरक्षक जीवात्मा में सब मनुष्य शरीर और सब इंद्रियां अधिनिहित हैं, जो उस आत्मा को नहीं जानता, वह इस शरीर को धारण करके क्या करेगा, अर्थात ऐसे मूढ़ मनुष्य का शरीर धारण करना नितांत निष्फल है। परंतु जो इस आत्मा को जानते हैं वे जन्म मरण के आवर्तमान चक्र से छूटकर मोक्ष लाभ करते हैं। इस पक्ष में मनुष्य शरीर ऋक् कहता है क्योंकि इसी के द्वारा परमेश्वर की उपासना की जा सकती है। अन्य किसी भी प्राणी शरीर में जीवात्मा ईश्वर उपासना नहीं कर सकता। उस शरीर का संबंधी जो अविनाशी धर्म वाला है वह अक्षर है और इंद्रियां देव कहलाती हैं। यह पक्ष आत्मवादियों का है। अक्षरम नक्षरति क्षीयते वा अक्षरम भवति। अपने ऋग्वेद भाष्य में इस मंत्र के अर्थ में भावार्थ में ऋषि दयानंद लिखते हैं, जो सब वेदों का परम प्रमेय पदार्थ रूप और वेदों से प्रतिपाद्य ब्रह्म और जीव तथा कारण कार्य कारण रूप जगत है, इन सबका आधार अर्थात ठहरने का स्थान, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में बेस, ठहरने का स्थान, आकाशवत व्यापक परमात्मा और जीव तथा कार्य कारण रूप जगत व्याप्य है, इसी से सब जीव आदि पदार्थ परमेश्वर में निवास करते हैं। और जो वेदों को पढ़ के इस प्रमेय को नहीं जानते, यानी ईश्वर को नहीं जानते, वे वेदों से कुछ भी फल नहीं पाते। और जो वेदों को पढ़ के जीव कार्य कारण रूप जगत और ब्रह्म को गुण कर्म स्वभाव से जानते हैं, यानी पृथक पृथक जानते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को पृथक जानते हैं, कार्य रूप जगत को और कारण रूप प्रकृति को पृथक जानते हैं और जीव की सत्ता को पृथक जानते हैं, वे सब धर्म अर्थ काम और मोक्ष को सिद्ध करके आनंद को प्राप्त करते हैं। महानुभावों, प्रत्येक वेद मंत्र किसी न किसी देवता की स्तुति करता है, परंतु वेद प्रतिपाद्य ये सब देवता एक महादेव की ओर संकेत करती हैं। जैसा कि निरुक्तकार लिखते हैं, महाभाग्या देवताया एक एवात्मा बहुधा स्तूयते, अर्थात देवता के अत्यंत भाग्यशाली होने से एक ही देवता की अनेक प्रकार से स्तुति की जाती है। वह देवता कौन है? इसका उत्तर देते हुए निरुक्त के परिशिष्ट में कहा गया, अथैष महानात्मा सत्व लक्षण तत्परम तद ब्रह्म, अर्थात वह महान आत्मा ही परमात्मा है, वही ब्रह्म है। अग्निमीळे कहकर ऋग्वेद के प्रथम मंत्र में उसी की स्तुति का उल्लेख मिलता है। वेदाध्ययन का मुख्य प्रयोजन तो अंततः ईश्वर प्राप्ति ही है। समस्त ऋचाएं उसी परम सत्ता का अवबोध करने के लिए हैं। इसीलिए ऋषि दयानंद ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के प्रतिज्ञा विषय में कहा, नैवेश्वरस्यैकस्मिन्नपि मंत्रार्थेत्यंत त्यागो भवति, अर्थात वेद के एक भी मंत्र में उसके ईश्वर परक अर्थ की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। हमें वेद मंत्रों के पास इस पवित्र भाव के साथ जाना चाहिए कि वे हमें उस अक्षर ब्रह्म के पवित्र चरणों में पहुंचाने में सहायक होंगे। यदि ऐसा नहीं होता तो वेद का पढ़ना व्यर्थ है। यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति का यही अभिप्राय है। अब आते हैं एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक ही है, वह अद्वैत अर्थात अद्वितीय है। अथर्ववेद में इसकी स्पष्ट घोषणा करते हुए कहा गया, न द्वितीयो न तृतीयश्च चतुर्थो नाप्योच्यते, न पंचमो न षष्ठः सप्तमो नाप्योच्यते, नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्योच्यते, स एष एक एकवृदेक एव, अर्थात न वह दूसरा है, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवा, न आठवा, न नौवा और न दसवा है, वह तो एक ही है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, वह एक ही है। महानुभाव, मैंने एक गीत गाया है, ओम नारायण ओम खम ब्रह्म, इसका एक चरण है इस गीत का, दूसरा न तीसरा चौथा भी है नहीं, पांचवा न छठा सातवा भी है नहीं, आठवा न नौवा दसवा भी है नहीं, ग्यारहवा न सौवा करोड़वा भी है नहीं, द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थोपि न उच्यते, पंचमो न षष्ठो सप्तमोपि न उच्यते, अष्टो न नवमो दशमोपि न उच्यते, प्रथमं हि प्रथमं ब्रह्म है प्रथमं, पहला ही पहला ब्रह्म है पहला, ईशावास्यमिदं सर्वं ईशावास्यमिदं सर्वं। तो ये अथर्ववेद के उस मंत्र का ही अनुवाद था जो हमने आपको काव्य रूप में भी सुना दिया, कि ईश्वर दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां और दसवां नहीं है, वो पहला ही पहला है, यानी एक ही है, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं, या अपने जैसा भी दूसरा ईश्वर नहीं है, यानी सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य, वह एक ही है। आज की इस चर्चा को यही विराम देते हैं, आगे की चर्चा हम कल के श्रव्य कणिका में करेंगे। ओम।